का था, रूह वही, रूप नया।
दिलेर मुजरिम के भाग तीन में आपने सुना कि आखिरकार फरीदी ने डॉक्टर तौसीफ से मुलाकात कर ही ली। डॉक्टर तौसीफ ने बूढ़े प्रोफेसर इमरान के बारे में फरीदी को बताया कि शायद वो वजाहत मिर्जा का कोई रिश्तेदार है। वापस आते वक्त फरीदी पर गोलियों की बौछार होने लगी। चारों तरफ से उस पर कई लोग मिलकर गोलियां बरसा रहे थे। आखिर वो कौन लोग थे, फरीदी से क्या चाहते थे और उनका सविता देवी के मर्डर से क्या ताल्लुक है, सुनिए भाग चार में। शाम का अखबार बाजार में आते ही सारे शहर में सनसनी फैल गई। अखबार वाले गली कूचों में चीखते फिर रहे थे, इंस्पेक्टर फरीदी का कत्ल, इंस्पेक्टर फरीदी का कत्ल, एक हफ्ते के अंदर शहर में तीन तीन कत्ल, शाम की ताजा खबर, शाम की ताजा खबर। अखबार में इस घटना का ब्यौरा कुछ इस तरह दिया गया था, आज 2 बजे इंस्पेक्टर फरीदी की कार पुलिस अस्पताल के कंपाउंड में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर फरीदी कार से उतरते वक्त लड़खड़ा कर गिर गए। किसी ने उनके दाएं बाजू और बाएं कंधे को गोलियों का निशाना बना दिया था। फौरन ही डॉक्टरी मदद पहुंचाई गई लेकिन फरीदी साहब बच ना सके। 3 घंटे मौत और जिंदगी की कश्मकश से जूझने के बावजूद वे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। यकीनन ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इंस्पेक्टर फरीदी शायद सविता देवी के कत्ल के सिलसिले में छानबीन कर रहे थे लेकिन उन्होंने इसकी खबर किसी को नहीं दी थी। चीफ इंस्पेक्टर साहब को भी इस बात का पता नहीं कि उन्होंने जासूसी का कौन सा नया तरीका अपनाया था। अभी तक कोई नहीं बता सकता कि इंस्पेक्टर फरीदी आज सुबह कहां गए थे लेकिन उनकी कार पर जमी हुई धूल और पहियों की हालत बताती है कि उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया था। इंस्पेक्टर फरीदी की उम्र 30 साल की थी, वे कुंवारे थे, उन्होंने 2 बंगले और 1 बड़ी जायदाद छोड़ी है। उनके किसी वारिस का कोई पता नहीं चल सका है। ये खबर आग की तरह सारे शहर में फैल गई। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में हलचल मची हुई थी। इंस्पेक्टर फरीदी के दोस्तों ने लाश हासिल करने की कोशिश की लेकिन उन्हें लाश देखने तक की इजाजत न दी गई और कई खबरों से मालूम हुआ कि पोस्टमार्टम करने पर 5 या 6 जख्म पाए गए थे। ये सब कुछ हो रहा था लेकिन सार्जेंट हमीद न जाने क्यों चुप था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इंस्पेक्टर फरीदी राजरूप नगर गया था लेकिन उसने इसकी कोई भी खबर चीफ इंस्पेक्टर को न दी। वो पुलिस और खुफिया पुलिस की सिर्फ भाग दौड़ देख रहा था। दूसरे जासूसों और बहुत सारे लोगों ने उससे पूछा लेकिन उसने एक को भी ठीक ढंग से कुछ जवाब न दिया। किसी से कहता कि उन्होंने मुझे अपना प्रोग्राम बताया ही नहीं था, तो किसी से कहता उन्होंने मुझे ये तक तो बताया नहीं कि उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी है, तो फिर जासूसी का क्या प्रोग्राम बताते। किसी को कहता कि वे अपनी स्कीमों में किसी की राय नहीं लेते थे और ना मिलकर काम करते थे। लगभग 10 बजे रात को एक नेपाली चोरों की तरह छिपता छिपाता सार्जेंट हमीद के घर से निकला। बड़ी देर तक यूं ही सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा, फिर एक घटिया सी शराब की दुकान में घुस गया। जब वो वहां से निकला तो उसके पैर बुरी तरह डगमगा रहे थे। आंखों से मालूम होता था जैसे वो बहुत पी गया हो। वो लड़खड़ाता हुआ टैक्सियों की तरफ गया। भाई शाप अपने को बहुत दूर जाना मांगता है, उसने एक टैक्सी वाले से कहा। अरे जाओ साहब, हमें फुर्सत नहीं, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। ओ बाबा, आपुन तेरे को पैसा देगा, उसने जेब में हाथ डालकर पर्स निकालते हुए कहा। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे फुर्सत नहीं है, टैक्सी ड्राइवर ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अरे लो हमारा बाप, लो तुम भी शाला, हमको क्या याद करेगा, आप चलेगा हमारा बाप, उसने 50-50 के 2 नोट उसके हाथ पर रखते हुए कहा। बैठिए, कहाँ चलना है, टैक्सी ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। अरे जाओ, हमको नहीं जाना मांगता, हम तुमको ये पैसा भीख में दिया, उसने रूठ कर जमीन पर बैठते हुए कहा। अरे नहीं साहब, उठिए उठिए, चलिए आप जहाँ कहें आपको पहुंचा दूंगा, चाहे जहन्नुम ही क्यों ना हो, टैक्सी ड्राइवर ने उसके नशे की हालत से लुत्फ उठाते हुए हंसकर कहा,
जहन्नुम ले चलेगा? अरे तुम बहुत बहुत बड़ा अच्छा आदमी है। अरे तुम हमारा बाप है, तुम हमारा भाई है, तुम हमारा माँ है, तुम हमारा बीवी है। अरे शाला, तुम हमारा बीबी का शाला है। तुम हमारा क्या है?
नेपाली ने उठकर कहा, साहब हम तुम्हारे सब कुछ है, बोलो कहाँ चलोगे? टैक्सी ड्राइवर ने उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाकर हंसते हुए कहा,
जिधर हम बतलाना मांगता शाला, तुम नहीं जानता कि हम बहुत बड़ा लोग हैं। हम तुमको बख्शीश देगा, चलो सीधा सीधा चलो।
मधोश नेपाली ने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। दूसरे मोड़ पर पहुंचकर टैक्सी राजरूप नगर की तरफ जा रही थी। डॉक्टर शौकत इंस्पेक्टर फरीदी की मौत की खबर सुनकर दंग रह गया। उसे हैरत थी कि आखिर एकदम से ये क्या हो गया, लेकिन वो सोच भी ना सकता था कि उसकी मौत सविता देवी के कत्ल की खोजबीन के सिलसिले में हुई थी। वो यही समझ रहा था कि फरीदी के किसी पुराने दुश्मन ने उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। जासूसी विभाग वालों के लिए दुश्मनों की अच्छी खासी फौज पैदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। इस पेशे में कामयाब आदमियों की मौतें ज्यादातर इसी तरह होती हैं। सविता देवी के कत्ल के सिलसिले में उसकी अब तक यही राय थी कि ये काम उन्हीं के किसी मजहब वाले का है, जिसने मजहबी जज्बात से अंधा होकर आखिरकार उन्हें कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर फरीदी का ये ख्याल कि वो हमला दरअसल उसी पर था, धीरे धीरे उसके दिमाग से हटता जा रहा था। यही वजह थी कि जब उसे राजरूप नगर के डॉक्टर तौसीफ का खत मिला तो उसने उस कस्बे के नाम पर ध्यान तक न दिया। दूसरे डॉक्टर तौसीफ खुद उससे मिलने के लिए आया था। उसने नवाब साहब के मर्ज की सारी बातें बताकर उसे ऑपरेशन करने पर राजी कर लिया था। डॉक्टर शौकत की कार राजरूप नगर की तरफ जा रही थी। वो अपने असिस्टेंट और दो नर्सों को हिदायत देकर आया था कि वो 4 बजे तक ऑपरेशन का जरूरी सामान लेकर राजरूप नगर पहुंच जाएं। नवाब साहब के खानदान वाले अभी तक कर्नल तिवारी के ट्रांसफर और तौसीफ के नए फैसले से वाकिफ न थे। डॉक्टर शौकत की आमद से वे सब हैरत में पड़ गए, खासकर नवाब साहब की बहन तो आपे से बाहर हो गई।
डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस हरकत का मतलब नहीं समझी, वे तौसीफ से बोली।
मोहतरमा, मुझे अफसोस है कि मुझे आपसे राय लेने की जरूरत नहीं है,
तौसीफ ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब? नवाब साहब की बहन ने हैरत और गुस्से के मिले जुले अंदाज में कहा।
मतलब ये है कि अचानक कर्नल तिवारी का तबादला हो गया है और अब इसके अलावा कोई और सूरत बाकी नहीं रही।
कर्नल तिवारी का तबादला हो गया है?
उनका खत पढ़िए।
डॉक्टर तौसीफ ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर उनके सामने डाल दिया। वे खत पढ़ने लगी। कुंवर सलीम और नवाब साहब की भांजी नजमा भी झुक कर उन्हें देखने लगी। लेकिन मैं ऑपरेशन हरगिज नहीं होने दूंगी, बेगम साहिबा ने खत वापस करते हुए कहा।
देखिए मोहतरमा, यहाँ आपकी राय का कोई सवाल नहीं रह जाता। नवाब साहब का डॉक्टर होने की हैसियत से इसकी 100% जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। कर्नल तिवारी की गैर मौजूदगी में मैं कानूनन अपने हक का इस्तेमाल कर सकता हूँ।
बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, कुंवर सलीम ने कहा। अगर डॉक्टर शौकत मेरे चचा को इस बीमारी से निजात दिला दें तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मेरा भी यही ख्याल है कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। सलीम, नवाब साहब की बहन ने गरज कर कहा। फूफी साहिबा, मैं समझता हूँ कि आप मोहब्बत करने वाली बहन का दिल रखती हैं, लेकिन उनकी सेहत की खातिर दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। कुंवर भैया, आप इतनी जल्दी बदल गए, नजमा ने कहा। क्या करूं नजमा, अगर कर्नल तिवारी मौजूद होते तो मैं कभी ऑपरेशन के लिए तैयार ना होता। लेकिन ऐसी सूरत में तुम ही बताओ, चचा जान कब तक यूं ही पड़े रहेंगे?
क्यों साहब, क्या ऑपरेशन के अलावा और कोई सूरत नहीं हो सकती, नवाब साहब की बहन ने डॉक्टर शौकत से पूछा।
अब ये तो मैं मरीज देखने के बाद ही बता सकता हूँ, डॉक्टर शौकत ने मुस्कुरा कर कहा।
हाँ हाँ, हो सकता है इसकी नौबत ही ना आए,
डॉक्टर तौसीफ ने कहा। नवाब साहब जिस कमरे में थे वो ऊपरी मंजिल पर था। सब लोग नवाब साहब के कमरे में आए। वे कंबल ओढ़े लेटे हुए थे, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रहे हैं। डॉक्टर शौकत ने अपने आले की मदद से उनका चेकअप करना शुरू किया। मुझे अफसोस है बेगम साहिबा कि ऑपरेशन के बगैर काम ना चलेगा, डॉक्टर शौकत ने अपने आले को हैंडबैग में रखते हुए कहा और फिर सब लोग नीचे आ गए। डॉक्टर शौकत ने नवाब साहब के खानदान वालों को काफी इत्मीनान दिलाया। उनकी तसल्ली के लिए उसने इन सब लोगों को अपने बेशुमार खतरनाक केसों के हालात तक सुना डाले। नवाब साहब का ऑपरेशन तो उनके मुकाबले में कोई चीज नहीं थी। फूफी साहिबा, आप नहीं जानती, डॉक्टर शौकत जैसा डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता, बेगम साहिबा से सलीम ने कहा। अरे मैं किस काबिल हूं, सब खुदा की मेहरबानी और उनका एहसान है, डॉक्टर शौकत ने कहा। हाँ तो ये बताइए कि ऑपरेशन से पहले कोई दवा वगैरह दी जाएगी, कुंवर सलीम ने पूछा। फिलहाल तो एक इंजेक्शन दूंगा। और ऑपरेशन कब होगा, नवाब साहब की बहन ने पूछा। आज ही 8 बजे रात से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, 4 बजे तक मेरा असिस्टेंट और 2 नर्सें यहाँ आ जाएंगी। मेरा तो दिल घबरा रहा है, नवाब साहब की भांजी ने कहा। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अपनी सारी कोशिशें लगा दूंगा, केस कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है और अल्लाह ताला से बड़ा तो और कोई भी नहीं, उससे हम सबको उम्मीद है। इंशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब होगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्टर शौकत ने कहा। डॉक्टर साहब आप इत्मीनान से अपनी सारी तैयारियां कीजिए, कुंवर सलीम ने हंसकर बोला। बेचारी औरतों के बस में घबराने के अलावा और कुछ नहीं है। नवाब साहब की बहन ने उसे तेज नजरों से देखा और नजमा के माथे पर लकीरें पड़ गईं। अरे मेरा मतलब है फूफी साहिबा कि कहीं डॉक्टर साहब आप लोगों की हालत देखकर परेशान ना हो जाएं। अब चचा जान को अच्छा हो ही जाना चाहिए, हद है आखिर, 18 दिन हो गए अभी तक उनको होश नहीं आया। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे हम लोग उन्हें सेहतयाब देखने की ख्वाहिशमंद नहीं है, बेगम साहिबा ने मुंह बनाकर कहा।
खैर खैर, हाँ तो डॉक्टर शौकत, मेरे ख्याल से अब आप इंजेक्शन दे ही दीजिए,
फैमिली डॉक्टर तौसीफ ने कहा। डॉक्टर शौकत, डॉक्टर तौसीफ और कुंवर सलीम ऊपरी मंजिल पर मरीज के कमरे में चले गए और दोनों माँ बेटियां हॉल में रुककर आपस में बातें करने लगीं। नजमा कुछ कह रही थी और नवाब साहब की बहन के माथे पर लकीरें उभर रही थी। उन्होंने 2-3 बार सीढ़ियों की तरफ देखा और बाहर निकल गईं। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर शौकत कुंवर सलीम और डॉक्टर तौसीफ के साथ बाहर आया। अच्छा तो कुंवर साहब, अब हम लोग चलेंगे, 4 बजे तक नर्सें और मेरा असिस्टेंट आपके यहाँ आ जाएंगे और मैं भी ठीक 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाऊंगा, डॉक्टर शौकत ने कहा। तो यहीं रुक जाइए ना, सलीम ने कहा। नहीं नहीं, डॉक्टर तौसीफ के यहाँ रहना ठीक होगा और फिर कस्बे में मुझे कुछ काम भी है, हम लोग 6 बजे तक आ जाएंगे। डॉक्टर कार में बैठ गए लेकिन डॉक्टर शौकत की लाख कोशिशों के बावजूद कार स्टार्ट ना हुई। अरे ये तो बड़ी मुसीबत हुई, डॉक्टर शौकत ने कार से उतरकर मशीन का जायजा लेते हुए कहा। अब फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी गाड़ी निकाल कर लाता हूँ, कुंवर सलीम ने कहा और लंबे डग भरता हुआ गैराज की तरफ चला गया जो पुरानी कोठी के करीब था। थोड़ी देर बाद नवाब साहब की बहन आ गई।
डॉक्टर शौकत की कार खराब हो गई है तो कुंवर साहब कार के लिए गए हैं,
डॉक्टर तौसीफ ने उनसे कहा। ओह, कार तो मैंने ही शहर भेज दी है और भाईजान वाली कार तो बहुत दिन से खराब पड़ी है। अच्छा तो फिर आइए डॉक्टर साहब, हम लोग पैदल ही चलें, सिर्फ 1.5 मील ही तो चलना है, डॉक्टर शौकत ने कहा। डॉक्टर तौसीफ, मुझे आपसे कुछ राय मशवरा करना है, नवाब साहब की बहन ने कहा। अगर आप लोग शाम तक यहीं ठहर जाएं तो इसमें दिक्कत क्या है? डॉक्टर साहब को आप रोक लें, मुझे कोई एतराज ना होगा, डॉक्टर शौकत ने कहा। नहीं आप कुछ ख्याल ना कीजिए, अगर कार शाम तक वापस आ गई तो मैं 6 बजे तक भिजवा दूंगी, वरना फिर किसी और सवारी का इंतजाम किया जाएगा, बेगम साहिबा बोली। शाम को तो मैं हर सूरत में पैदल ही आऊंगा क्योंकि ऑपरेशन के वक्त मैं काफी चाक चौबंद रहना चाहता हूँ, शौकत ने कहा और कस्बे की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में कुंवर सलीम मिला। मुझे अफसोस है डॉक्टर की इस वक्त कार मौजूद नहीं, आप यहीं रहिए, आखिर इसमें बुराई ही क्या है? अरे नहीं, बुराई तो कोई नहीं, लेकिन मुझे तैयारी करनी है, डॉक्टर शौकत ने जवाब दिया। अच्छा तो चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, रास्ता मेरा देखा हुआ है, शुक्रिया। डॉक्टर शौकत जैसे ही पुरानी कोठी के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब तरह का कहकहा सुनाई दिया। बूढ़ा प्रोफेसर इमरान कहकहे लगाता हुआ उसकी तरफ आ रहा था।
हेलो हेलो, अपने मकान के करीब अजनबियों को देखकर मुझे खुशी हुई,
बूढ़ा चीखा। डॉक्टर शौकत रुक गया, उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म के सारे रोएं खड़े हो गए हों। इतनी खौफनाक शक्ल का आदमी आज तक उसकी नजरों से न गुजरा था।
मुझसे मिलिए, मैं हूँ प्रोफेसर इमरान, और आप?
उसने हाथ मिलाने के लिए दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। सलाम, मुझे शौकत कहते हैं, शौकत ने बेदिली से हाथ मिलाते हुए कहा। लेकिन उसने महसूस किया कि हाथ मिलाते वक्त बूढ़ा कुछ सुस्त पड़ गया था। बूढ़े ने फौरन ही अपना हाथ खींच लिया और कहकहा लगाता उछलता कूदता फिर पुरानी कोठी में वापस चला गया। डॉक्टर शौकत हैरान खड़ा था। तभी एकाएक करीब की झाड़ियों में से एक बड़ा सा कुत्ता उस पर झपटा। डॉक्टर शौकत घबरा कर कई कदम पीछे हट गया। कुत्ते ने छलांग लगाई और एक भयानक चीख के साथ जमीन पर जा गिरा। कुछ सेकंड तक वो तड़पा और फिर उसकी हरकत बंद हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि डॉक्टर शौकत को कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिल सका। इसके बाद उसे कुछ समझ में ही ना आ रहा था कि वो क्या करे। अरे अरे, ये मेरे कुत्ते को क्या हुआ? टाइगर टाइगर, एक जनाना आवाज सुनाई दी। शौकत चौंक पड़ा। सामने नवाब साहब की भांजी नजमा खड़ी थी। अरे मुझे तो खुद ही हैरत है, शौकत ने कहा। मैंने इसके गुर्राने की आवाज सुनी थी, क्या आप पर झपटा था? लेकिन इसकी सजा तो मौत नहीं हो सकती, वो तेज आवाज में बोली। यकीन कीजिए मोहतरमा, मुझे खुद हैरत है कि उसे एकदम से क्या हो गया। अगर आपको मुझ पर शक है तो भला बताइए मैंने उसे क्यों कर मारा। नजमा कुत्ते की लाश पर झुकी उसे पुकार रही थी, टाइगर टाइगर। बेकार है मोहतरमा, ये ठंडा हो चुका है, शौकत कुत्ते की लाश को हिलाते हुए बोला। आखिर उसे क्या हो गया? नजमा ने डरे हुए अंदाज में पूछा। मैं खुद यही सोच रहा हूं, बाहर से तो कोई जख्म भी नहीं नजर आ रहा, हैरत है। तभी अचानक डॉक्टर शौकत के दिमाग में ख्याल आया, वो उसके पंजों को देखने लगा। ओह, उसके मुंह से हैरत की चीख निकली और उसने कुत्ते के पंजे में चुभी हुई ग्रामोफोन की सुई खींच ली और गौर से उसे देखता रहा। ये देखिए मोहतरमा, मेरे ख्याल से ये जहरीली सुई ही आपके कुत्ते की मौत का सबब बनी है।
सुई? ग्रामोफोन की सुई? क्या मतलब?
नजमा ने चौंक कर कहा। मतलब तो मैं भी नहीं समझा, लेकिन पूरी तौर पर ये कह सकता हूं कि ये सुई खतरनाक हद तक जहरीली है। मुझे बहुत अफसोस है, कुत्ता बहुत ही उम्दा नस्ल का था।
लेकिन ये सुई यहां कैसे आई? वो पलकें झपकाते हुए बोली।
किसी से गिर गई होगी। अजीब बात है, शौकत ने वो सुई एहतियात से थर्मामीटर रखने वाली नली में रख ली और बोला, ये एक दिलचस्प चीज है, मैं इसकी जांच करूंगा। आपके कुत्ते की मौत पर एक बार फिर अफसोस करता हूं।
डॉक्टर, मैं आपसे सच कहती हूं, मैं इस कुत्ते का बहुत ख्याल रखती थी,
उसने हाथ मलते हुए कहा। जी वाकई बहुत अच्छा कुत्ता था, इस नस्ल के ग्रेहाउंड बहुत कम देखने को मिलते हैं, शौकत ने जवाब दिया।
बस होने वाली बात थी, अफसोस तो होता है कि अब हो ही क्या सकता है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये सुई यहां आई कैसे।
मैं खुद यही सोच रहा हूं, डॉक्टर शौकत ने कहा।
हो सकता है कि ये सुई उस पागल बुड्ढे की हो, उसके आसपास अजीबोगरीब चीजें हैं, मनहूस कहीं का।
क्या आप उन साहब के बारे में तो नहीं कह रही जो अभी इस कोठी से निकले थे?
जी हाँ वही होगा,
नजमा ने उत्तर दिया। ये कौन साहब हैं?
बहुत ही अजीबोगरीब आदमी मालूम होते हैं,
डॉक्टर शौकत ने कहा।
ये हमारा किराएदार है प्रोफेसर इमरान, लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, भाई मुझे तो यकीन नहीं आता। वो देखिए, उसने मीनार पर एक दूरबीन लगा रखी है, प्रोफेसर इमरान, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ये तो बड़े मशहूर आदमी है। मैंने इनकी कई किताबें पढ़ी हैं। अगर वक्त मिला तो इनसे जरूर मिलूंगा। क्या कीजिएगा मिलकर, बहुत ही बदजात है वो, होश में ही कब रहता है। अरे वो जानवर से भी बदतर है डॉक्टर साहब, नजमा ने कहा। खैर हटाइए इन बातों को। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कोई खतरा तो नहीं है ना?
जी नहीं, आप इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होने पाएगी, डॉक्टर शौकत ने कहा। अच्छा तो अब मैं चलूं, ऑपरेशन की तैयारी करनी है।
डॉक्टर शौकत कस्बे की तरफ चल पड़ा। एक शख्स झाड़ियों की आड़ लेता हुआ उसका पीछा कर रहा था।
रास्ते भर शौकत का दिमाग सुई और कुत्ते की मौत में उलझा रहा। साथ ही साथ वो खलिश भी उसके दिल में चुभ रही थी जो नजमा से बात करने के बाद पैदा हो गई थी। उसका दिल तो यही चाह रहा था कि वो जिंदगी भर खड़ा उससे इसी तरह बातें करते रहे। औरतों से बात करना उसके लिए नई बात न थी, वो तकरीबन दिन भर नर्सों से घिरा रहता था। और इसके अलावा उसका पेशा भी ऐसा था कि दूसरी औरतों से भी उसका साबका पड़ता था। लेकिन नजमा में न जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से रह रहकर उसका चेहरा शौकत की नजरों के सामने आ जाता था। डॉक्टर तौसीफ के घर पहुंचते ही वो सब कुछ भूल गया, क्योंकि अब वो ऑपरेशन की स्कीम तैयार कर रहा था। वो एक जिंदगी बचाने जा रहा था। उसे अपनी कामयाबी का उसी तरह यकीन था जिस तरह कि वो 11 बजे खाना खाएगा। लगभग एक घंटे के बाद डॉक्टर तौसीफ नवाब साहब की कार लेकर घर आ गया। कहिए डॉक्टर साहब, कोई खास बात? डॉक्टर शौकत ने पूछा।
ऐसे तो कोई बात नहीं, अलबत्ता कुत्ते की मौत से हर शख्स हैरान है। लाइए देखूं तो वो सुई।
डॉक्टर तौसीफ ने सुई लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा।
ये देखिए, बड़ी अजीब बात है, मालूम नहीं सुई किस जहर में बुझाई गई है।
डॉक्टर शौकत थर्मामीटर की नलकी से सुई निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला।
देखते ही देखते कुत्ता खत्म हो गया।
ग्रामोफोन की सुई है, मालूम नहीं किस जहर में बुझाई गई है।
मेरे ख्याल से पोटेशियम साइनाइड या उसी किस्म का कोई जहर है।
डॉक्टर शौकत ने सुई को लेकर फिर थर्मामीटर की नलकी में रख दिया।
मुझे तो ये सुई पागल प्रोफेसर की मालूम होती है, उसी को अजीबोगरीब चीजें और हरकतें करने का शौक है। ये बातें दूर दूर तक मशहूर हैं।
मुझे अभी तक प्रोफेसर के बारे में ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं उस शख्सियत के बारे में और जानना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ये जानता हूँ कि वो एक मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, डॉक्टर शौकत ने कहा।
उसकी जिंदगी अभी तक एक राज है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि उससे 2 साल पहले वो एक ठीक दिमाग का आदमी था। उसके बाद अचानक उसकी आदतों में तब्दीलियां आने लगीं, और अब तो सभी का ख्याल है कि उसका दिमाग खराब हो गया है।
मैंने तो साहब इतना भयानक आदमी आज तक नहीं देखा, डॉक्टर शौकत ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, उसके बाद डॉक्टर तौसीफ बोला।
हाँ तो क्या प्रोग्राम है? मेरे ख्याल से तो अब दोपहर का खाना खा लेना चाहिए।
खाने के दौरान ऑपरेशन और दूसरे विषयों पर बातचीत होती रही। अचानक डॉक्टर शौकत को कुछ याद आ गया।
डॉक्टर साहब, मैं जल्दी में अपने असिस्टेंट से कुछ जरूरी बातें करना भूल गया हूँ। अगर आप इंतजाम कर सकें कि मेरा पर्चा उस तक पहुँच जाए तो बड़ा अच्छा होगा, डॉक्टर शौकत ने कहा।
चलिए अब 2 काम हो जाएंगे। मैं दरअसल शहर जाने के लिए नवाब साहब की कार लाया था, आप पर्चा दे दीजिए। और हाँ, क्यों ना आपके साथियों को भी अपने साथ लेता जाऊं?
इससे बेहतर क्या हो सकता है?
इस पर्चे के अलावा और कोई काम है?
जी नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से आप उन लोगों को उसी तरफ कोठी लेते जाइएगा।
ठीक है, 6 बजे आपके लिए कार भिजवा दी जाएगी।
नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं पैदल ही आऊंगा।
क्यों?
बात दरअसल यह है डॉक्टर साहब कि ऑपरेशन जरा नाजुक है, और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले अपनी कसरत हो जाए जिससे जिस्म में चुस्ती पैदा हो सके।
भाई डॉक्टर शौकत, आपकी तारीफ के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। हकीकत में आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए।
डॉक्टर तौसीफ के चले जाने के बाद डॉक्टर शौकत ने एक के बाद एक वे किताबें पढ़नी शुरू की जो वो साथ में लाया था। एक कागज पर पेंसिल से कुछ खाके बनाए और देर तक उन्हें देखता रहा। पुराने रिकॉर्डों की कुछ फाइलें देखी। इस तरह दिन खत्म हो गया। तकरीबन 5 बजे उसने किताबें और फाइलें एक तरफ रख दी। उसे ठीक 6 बजे यहां से निकलना था। दिसंबर का महीना था। शाम की किरणें फीकी फीकी लाली में बदलती जा रही थी। डॉक्टर तौसीफ का नौकर अंडे के सैंडविच और कॉफी ले आया था। रात का खाना उसे कोठी में खाना था, इसलिए उसने सिर्फ एक सैंडविच खाया और 2 कप कॉफी के बाद सिगरेट सुलगाकर टहलने लगा। घड़ी ने 6 बजाए। उसने कपड़े पहने और चेस्टर कंधे पर डालकर रवाना हो गया। वो धीरे धीरे टहलता हुआ जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियां और पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी वजह से सड़क और ज्यादा अंधेरी हो गई थी। लेकिन डॉक्टर शौकत ऑपरेशन के ख्याल में मगन बेखौफ चला जा रहा था। उससे तकरीबन 5 फुट पीछे एक दूसरा आदमी झाड़ियों से लगा हुआ चल रहा था। शायद उसने रबर सोल के जूते पहन रखे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर शौकत को उसके कदमों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। एक जगह डॉक्टर शौकत सिगरेट सुलगाने के लिए रुका तो वो शख्स भी रुक कर झाड़ियों की ओट में चला गया। जैसे ही शौकत ने चलना शुरू किया, वो फिर झाड़ियों से निकलकर उसी तरह उसका पीछा करने लगा। सड़क ज्यादा चलती हुई तो थी नहीं। वजह यह थी कि सड़क महज कोठी के लिए ही बनाई गई थी। अगर नवाब साहब ने अपनी कोठी बस्ती के बाहर ना बनवाई होती तो फिर इस सड़क का कोई वजूद भी ना होता। शौकत के वजनी जूतों की आवाज सुनसान सड़क पर इस तरह गूंज रही थी जैसे वो झाड़ियों में दुबक कर टी टी री री करने वाले झिंगुरों की डांट हो। शौकत चलते चलते हल्के सुरों में सीटी बजाने लगा। उसे अपने जूतों की आवाज सीटी की धुन पर ताल देती मालूम हो रही थी। किसी पेड़ पर एक बड़े पक्षी ने चौंक कर अपने पर फड़फड़ाए और उड़कर दूसरी तरफ चला गया। झाड़ियों के पीछे करीब ही गीदड़ों ने चीखना शुरू कर दिया था। जो शख्स डॉक्टर शौकत का पीछा कर रहा था उसका अब कहीं पता नहीं था। कुछ आगे बढ़कर बहुत ज्यादा घने पेड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। यहां पर दोनों तरफ पेड़ों की डालियां इस तरह आपस में मिल रही थीं कि आसमान तक न दिखाई दे। डॉक्टर शौकत दुनिया से बेखबर अपनी धुन में चला जा रहा था। अचानक उसके मुंह से एक चीख निकली और हाथ ऊपर उठ गए। उसके गले में एक मोटी सी रस्सी का फंदा पड़ा हुआ था। धीरे धीरे फंदे की पकड़ कसती गई और साथ ही साथ वो ऊपर उठने लगा। गले की रगें फूलने लगी, आंखें निकली पड़ रही थीं। उसने चीखना चाहा मगर आवाज ना निकली। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे जैसे उसका दिल कनपटियों और आंखों में धड़क रहा हो। धीरे धीरे उसे अंधेरा गहरा मालूम होने लगा। झींगरों और गीदड़ों का शोर दूर क्षितिज तक डूबता जा रहा था, फिर बिल्कुल खामोशी छा गई। वो जमीन से 2 फुट की ऊंचाई पर झूल रहा था। कोई उसी पेड़ पर से कूदकर झाड़ियों में गायब हो गया। फिर एक आदमी उसकी तरफ दूर से दौड़ता आता दिखाई दिया। उसके करीब पहुंचकर उसने हाथ मलते हुए इधर उधर देखा। दूसरे ही पल वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ने लगा। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हुआ वो उस डाल पर पहुंच गया जिसमें रस्सी बंधी थी। उसने रस्सी ढीली करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे डॉक्टर शौकत के पैर जमीन पर टिक गए। फिर रस्सी को उसी तरह बांधकर नीचे उतर आया। अब उसने जेब से चाकू निकालकर रस्सी काटी और शौकत को हाथों पर संभाले हुए सड़क पर लिटा दिया। फंदा ढीला होते ही बेहोश डॉक्टर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उस अजनबी ने माचिस जलाकर उसके चेहरे पर नजर डाली। आंखों की पलकों में हरकत पैदा हुई। मालूम हो रहा था जैसे वो 10-5 मिनट के बाद होश में आएगा। 2-3 मिनट गुजर जाने पर उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई और अजनबी जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद एक कराह के साथ डॉक्टर शौकत उठकर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। धीरे धीरे कुछ पहले के वाकयात उसके दिमाग में कौंध गए। ना चाहते हुए भी उसका हाथ गर्दन की तरफ गया, लेकिन अब वहां रस्सी का फंदा न था। अलबत्ता गर्दन बड़ी बुरी तरह दुख रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि वो बच किस तरह गया। अब उसे फरीदी मरहूम के अल्फाज बुरी तरह याद आ रहे थे और साथ ही सविता देवी की ख्वाब की बड़बड़ाहट भी याद आ रही थी। राजरूप नगर। उसके सारे जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट पड़ा। वो सोचने लगा कि वो भी कितना बेवकूफ है कि उसने फरीदी के शब्द भुला दिए और खौफनाक जगह पर अंधेरी रात में अकेला चला आया। उसकी जान लेने की ये दूसरी कोशिश थी। उसकी आंखों के सामने वो नेपाली का नक्शा घूम गया जिसने उसे धमकी दी थी। फिर अचानक वो जहरीली सुई याद आई और प्रोफेसर का भयानक चेहरा जो उससे उसने हाथ मिलाते हुए देखा था, और ठीक उसी जगह कुत्ता भी उछल कर गिरा था। तो क्या प्रोफेसर? लेकिन आखिर क्यों? ये सब सोचते सोचते उसे अपनी मौजूदा हालत का ख्याल आया और वो कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। चेस्टर करीब ही पड़ा था। उसने जल्दी से चेस्टर उठाकर कंधे पर डाला और तेजी से कोठी की तरफ रवाना हो गया। उसने सोचा कि घड़ी में वक्त देखे, लेकिन फिर माचिस जलाकर देखने की हिम्मत ना पड़ी। क्या डॉक्टर शौकत कोठी तक सही सलामत पहुंच सका? कौन था जिसने उसके ऊपर हमला किया था? क्या वाकई इंस्पेक्टर फरीदी की मौत हो चुकी है? जानने के लिए सुनिए भाग 5।